शांति। तो गीत में सुना, बाबा कितने अच्छे हो, बाबा कितने प्यारे हो, क्यों? तीन खजाने तो इस गाने में ही सुन लिए हमने, जो आज बाबा ने गिनाए। इसके अलावा भी क्यों अच्छे हो, पहले कहा ज्ञान रत्नों से धनवान बनाते हो, दूसरा कहा खुशी से वार करते हो, तीसरा कहा पावन बनाते हो। तो आज बाबा के सामने कौन सी सभा बैठी है? रिचेस्ट, हाईएस्ट, धनवान बच्चों की सभा बैठी है, 2000 वाली नोटों वाली नहीं, लेकिन ज्ञान रत्नों से भरी हुई, सच्चाई और सफाई से भरी हुई, पवित्रता से संपूर्ण ऐसी आत्माएं बाबा के सामने बैठी है आज। तो जब हम ये मुरली पढ़ रहे थे तो ऐसे ही गीत याद आ रहा था कि जो हमने पाया वो दुनिया नहीं पा सकी, है ना हमारा एक गीत, हमने जो पाया वो दुनिया पा नहीं सकती। तो बाबा आज देख रहे हैं हाईएस्ट और रिचेस्ट सभा को। तो बाबा ने पहली लाइन क्या कही, आज बाबा कौन सी सभा को देख रहे हैं? हाईएस्ट और अविनाशी खजानों की रिचेस्ट सभा को देख रहे हैं, ऐसे बच्चों को बाबा देख रहे हैं। दुनिया में भी अनेक रिचेस्ट आत्माएं हैं, लेकिन वो एक जन्म के लिए रिचेस्ट है, और हम अनेक जन्मों के लिए, उनके लिए तो निश्चित भी नहीं है कि वो एक जन्म के लिए भी रिचेस्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे। जैसे अभी देखा ना कुछ दिन पहले, एक ही रात में कितने लोग कंगाल हो गए। तो बाबा की मुरली भी वैसी ही चली संडे को आज की। और फिर बाबा ने कहा, आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हम तो अनेक जन्मों के लिए रिचेस्ट है, अविनाशी खजानों से संपन्न है। और बाबा ने कहा कि आपके पद्मों में, हर कदम में पद्मों की कमाई है, इतना जानते हो आप, इतनी कमाई आपकी होती है। आपका जो समय है, जो समय में आप पुरुषार्थ करते हो, उसमें पद्मों की कमाई होती है। और बाबा ने कहा, जाओ जाके देखो आप जैसा कोई है इस दुनिया में जिसकी इतनी कमाई होती है, चक्कर लगा के आओ सारे विश्व में। तो सारे विश्व में चक्कर लगाते, अब 2016 में फिगर निकलते, हर साल फिगर निकलते 10 richest people in the world। तो उसमें टॉप पे कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स की कमाई कितनी होती है? $81.7 की नेटवर्किंग है उसकी। ये वो व्यक्ति है जिसने कंप्यूटर का इन्वेंशन किया, और उसके धन की तुलना कई चीज़ों से करते हैं। कहते हैं कि अगर बिल गेट्स किसी पर रुपयों की या डॉलर की वर्षा कर दे तो 7 दिन 24 घंटे चलते रहेंगे, ऐसे 200 के भी ऊपर साल लगेंगे तब तक वो ख़त्म नहीं होंगे। इसकी इतनी कमाई है, हर सेकंड वो $250 के ऊपर कमाता है, और उसकी एक दिन की कमाई 20 मिलियन के हिसाब से है। और अगर बिल गेट्स सोचे कि वो अपने खर्चा करे जाके पैसे, तो 216 साल लग जाएंगे उसके पैसे ख़त्म होने में, फिर भी शायद नहीं ख़त्म होंगे, इतना रिचेस्ट है वो। और कहते हैं कि अगर बिल गेट्स सोचे कि मैं अपने पैसों में स्विमिंग करूं, तो साले डॉलर्स बिछा दे मीलों तक, तो भी माइल्स ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके पैसे ख़त्म नहीं होंगे। तो ऐसे कई रिचेस्ट लोग हैं इस दुनिया में, चाहे ये कितने भी रिचेस्ट है, लेकिन क्या इनकी आंखों ने परमात्मा को देखा? नहीं। इनकी आंखों ने धन को देखा, लेकिन इनकी आंखों ने अभी तक परमात्मा को नहीं देखा। इन्होंने 7 डेज कोर्स नहीं किया, ये इतने सारे जो 10 निकालते हैं हर साल फिगर्स, इनके पाँव अभी तक मधुबन की पावन भूमि पर नहीं पड़े। तो हम कितने भाग्यवान हैं, आज हम कहाँ बैठे हैं हिस्ट्री हॉल में, है ना? और वो यहाँ पे पहुँच पाया क्या? नहीं। तो कौन रिचेस्ट हुआ? हम बच्चे। तो उसने नशे से कहते हैं कि हम इतने रिचेस्ट हैं। एक छोटे से गांव में एक अगर माता रहकर छोटी सी झोपड़ी में बाबा बाबा भी कहती है, तो वो भी पद्मों की कमाई करती है, वो भी बिल गेट से रिचेस्ट है कि नहीं। तो भगवान संगम युग पर हमारी ऐसी संपत्ति है, ऐसी अविनाशी संपत्ति है जिसका हमें नशा रहना चाहिए, कि संगम युग का गिफ्ट है ये हमारे लिए बाबा। तो क्या हमें इतना नशा रहता है, ये देखना है, ये चेक करना है। ऐसे कई आत्माएं हुए, ऐसे कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, पैसे तो उनके पास बहुत होते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती। लास्ट वीक हमने मुंबई से एक पेशेंट देखा, हमने उनका बीपी चेक किया तो बीपी ज़्यादा था। तो वो कहता है हाँ ज़्यादा ही रहेगा बीपी तो हमने कहा क्यों? क्योंकि मैं रात में सोता ही नहीं हूँ, मैं तो रात में 7 बार उठ के चक्कर लगाता हूँ। तो हमने कहा क्यों, आप क्या जॉब करते हैं? तो कहा मैं बिजनेसमैन हूँ। तो वो ऑब्वियसली ऐसे ही होगा ना, उसको खुद को पता है, जैसे वो प्रूव कर रहा है, पैसे जितना कमा रहे नींद उतनी गंवा रहे। और एक किसान और एक लेबर जो पत्थर तोड़ता है, या एक किसान जो धूप में काम करता है, वो जैसे ही बेड पे जाता है उसको तुरंत नींद आ जाती है। लेकिन ये जो इतनी कमाई करते हैं धन की, इनके पास नींद ही नहीं। ऐसे आप लोगों को भी पता होगा कई आत्माएं जो सेंटर्स पर आती हैं। एक बहन का अनुभव सुना था, वो बहन जब सेंटर पर आई बहुत रिच, वो कहती थी कि मैं एक महीने में चाहूँ तो कितनी भी गाड़ियाँ खरीद सकती हूँ, हर महीने गाड़ी चेंज कर सकती हूँ, हर महीने एक नया बंगलो खरीद सकती हूँ। लेकिन जब वो बाबा के सेंटर पर आई और जब उसने ज्ञान सुना तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा ना ही मुझे पति का सुख है, ना ही बच्चों का सुख है, ना ही कोई फैमिली का सुख है। लेकिन जो उसने सुना उससे उसकी आंखें भर आई। तो जैसे इतना धन होते हुए भी वो धन जैसे उसके सामने पानी हो गया। तो ऐसी रिचेस्ट आत्माओं को आज बाबा देख रहे हैं। ये बाबा ने आगे कहा, अपने खजाने को जानते हो? तो कौन से खजाने कहे आज की मुरली में? संकल्प बड़े से बड़ा खजाना है, समय बड़े से बड़ा खजाना है, सर्वशक्तियाँ बड़े से बड़ा खजाना है, एक एक ज्ञान रत्न बड़े से बड़ा खजाना है, और सर्वगुण बड़े से बड़ा खजाना है। तो जब हम खजानों की लिस्ट निकालते हैं तो बाबा ने आज 5 खजाने जमाए गिनाए, और कितने हैं? 9 खजाने हैं टोटल। तो और कौन से हैं वो 4? समय और श्वास एक साथ आ जाता है, ज्ञान गुण शक्तियाँ 3 हो गए, खुशी का खजाना एक है। तो समय और श्वास एक साथ, संकल्प खुशी कहा, और खुशी आनंद दुआओं का खजाना, एक दुआ है, दुआ के साथ पुण्य का, और एक एक बता दो। सबसे बड़ी पूंजी हमारी क्या है? हाँ पवित्रता, वो भी खजाना है, वो खजाना है तो शक्ति है तो गुण है तो सब कुछ है। तो ये 9 खजाने हैं, ज्ञान गुण शक्ति समय श्वास एक साथ लेंगे, संकल्प और दुआएं पुण्य कर्म खुशी पवित्रता। तो बाबा ने कहा अपने खजानों को जानते हो, ये आपके इतने बड़े से बड़े खजाने हैं। तो बाबा का जब बन गए तो बाबा ने एक साथ सबको सर्व खजाने दे दिए और समान रूप में दे दिए, किसी को थोड़ा किसी को ज़्यादा ऐसा नहीं दिया, किसी को 1 गुना किसी को 10 गुना किसी को 100 गुना ऐसा नहीं दिया, सबको समान दिए। अब समान देने के बाद ये हमारे ऊपर है कि हम कितना जमा करते हैं और कितना गंवाते हैं। तो बाबा ने कहा जमा करने की विधि क्या है? बिंदी लगाना। तो सबसे पहले हम एक एक खजाने को लेंगे कि एक एक खजाने को हम जमा कैसे करें। तो ज्ञान का खजाना, ज्ञान के खजाने को कैसे जमा करना है? मुरली। तो रोज की मुरली जो हमारे पास आती है, मंथन करना, विचार सागर मंथन करना, नोट्स निकालना। बाबा ने लास्ट वीक मुरली में एक पॉइंट बोला था, अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स निकालते हैं, फिर नोट्स में से उनको क्या मिलती है? टॉपिक्स मिलती है कि जाकर ये समझाए, है ना। तो मुरली का अध्ययन, मुरली का विचार सागर मंथन करना। बाबा ने ज्ञान के बारे में काफ़ी चीज़ें कही है कि ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में टपकता रहे, ज्ञान की टिकलू टिकलू होती रहे, ज्ञान की रिमझिम होती रहे, ज्ञान की वर्षा करो और ज्ञान तुम्हें कंठ कर लेना है, है ना। 2-3 हफ्ते पहले मुरली में आया था, ज्ञान कंठ कर लेना है, दिन रात पढ़ते रहना है। और एक मुरली में कहा 1 घंटा तो एटलीस्ट पढ़ना है। तो मुरलियों से हमें ज्ञान का खजाना मिलेगा। और कहाँ से मिलेगा? अव्यक्त मुरली। एक होती साकार मुरली, अव्यक्त मुरली। हम सबको आदत डालनी है कि हर दिन एटलीस्ट 1 पैराग्राफ या 1 मुरली या 1 पेज अव्यक्त मुरली का भी रोज पढ़े, क्योंकि अव्यक्त मुरली में बहुत गहरी गहरी पॉइंट्स होती है, उसका भी आप चिंतन कर सकते हैं। तीसरा, हमारे बहुत सारे लिटरेचर है, लिटरेचर से भी हम ज्ञान उठा सकते हैं। जो हर महीने पत्र पुष्प आता है, हर सेंटर पे आता है ना पत्र पुष्प में, दादियों के क्लास होते हैं, बड़ी दादी जी की शिक्षाएं होती है, उससे आपको ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान अमृत मैगजीन जो आती है ना, बाबा ने ये भी बोला लास्ट वीक की मौली में कि कई बच्चे मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो मैगजीन्स भी पढ़नी है। कौन सी मैगजीन? बाहर वाली नहीं, हमारी मैगजीन ज्ञान अमृत, प्योरिटी की मैगजीन, या ओम शांति का जो न्यूज़पेपर आता है, प्योरिटी का पेपर आता है, वो सब हम पढ़ सकते हैं। अब ज्ञान के खजाने ये तो हमने पढ़े, परंतु ज्ञान की पॉइंट हमारी प्रॉपर्टी कब बनती है, खजाना कब बनता है? जब हम उसको यूज़ करते हैं। जब तक हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो सिर्फ पढ़ने तक रह जाएगी और बुद्धि तक रह जाएगी, परंतु उसको यूज़ करना है। जैसे कि लास्ट वीक माँ बने बोला, अगर कोई क्रोध करता है और आप भी क्रोध करते हो तो काम बिगड़ता है। तो इस पॉइंट को उठा के इसको हम यूज़ करें, लेके जाके कर्म में हमारे, तब वो ज्ञान की पॉइंट हमारी प्रॉपर्टी बनती है। ज्ञान की एक एक पॉइंट को लेकर उस पर अभ्यास करना है, उस पर मंथन करना है, तब ज्ञान की पॉइंट हमारा खजाना बनेगी। फिर दूसरा है गुण शक्तियाँ, इनको हम साथ में ले लेंगे। हिस्ट्री हॉल के बाहर गुण लिखे ना, सारे गुण की लिस्ट है, कि हमने अभी एक एक लिस्ट में से एक एक पॉइंट गुण की उठा के उस पर चिंतन किया है। तो एक एक गुण की पॉइंट उठा सकते हैं, हर हफ्ते या 15 दिन एक ही गुण पर पढ़ाई करना, आखिर ये गुण क्या है, ये गुण मेरे में कैसे आ सकता है। एक और विधि है, अगर किसी में हम कोई गुण देखते हैं, जैसे कि किसी में हर्षित रहने का बहुत गुण है, तो एक विधि है कि उसके पास जाओ और उसको पूछो कि आप इतना हर्षित कैसे रहते हो। तो उसने उससे काम किया होगा तो बताएगा ना। अगर कोई सरलचित है बहुत, परिस्थितियों में हम देखते हैं हम बहुत हलचल में आ जाते हैं, परंतु वो व्यक्ति बड़ा सरल रहता है, तो वो सरल कैसे रहता है? एक तो आप उसका भी योग लगा दोगे, वो भी चिंतन में लग जाएगा कि क्यों मेरे पास ये गुण है। और कितनी बार ऐसे होता है कि हमको पता ही नहीं होता कि हमारे पास वो गुण है, तो जब आप जाके उसको कहेंगे कि आपने ये गुण कैसे है, तो वो बताना चालू करेगा। उसने भी उस चीज़ पर मेहनत की होगी ना, संगम युग पे मेहनत तो लगती है ना, तो उसने उस गुण को कैसे धारण किया, तो क्या विधि है उसकी, तो उसको पूछे कि ये विधि है, और जो भी गुण है उसको प्रैक्टिकल में यूज़ करे। फिर शक्तियाँ भी ऐसी है, वैसे तो बाबा ने 8 शक्तियों के बारे में कहा है, लेकिन शक्तियाँ ढेर सारी है। कौन कौन सी शक्तियाँ? सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग शक्ति, इसके अलावा समाने की शक्ति, और कौन सी शक्तियाँ हैं? सहन शक्ति तो आ गई वो 8 शक्तियों में, इसके अलावा और क्या है? परख शक्ति आ गई उसमें, परिवर्तन शक्ति, सहनशीलता आ गया, दृढ़ता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, हाँ, असंभव को संभव करने की शक्ति, पवित्रता, हमने कहा ना पवित्रता भी एक शक्ति है, और संतुष्टता, संतुष्टता भी एक शक्ति है, तो गुण है, विशेषता है, तो ऐसे कई शक्तियाँ हैं। ज्ञान भी शक्ति है, बाबा कहते हैं ना ज्ञान बल, योग बल, तो योग भी शक्ति है, तो ऐसे कई सारी शक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि शक्तियाँ कौन सी हमारे पास, तब तो जाके हम उस पर काम करेंगे। तो शक्तियों की लिस्ट निकालनी है पहले, फिर एक एक शक्ति पर हम काम कर सकते, उसको यूज़ कर सकते। जैसे सहन शक्ति, हम हमेशा सहन शक्ति के बारे में बहुत पढ़ते हैं ना, वो एक हमारी फेवरेट शक्ति है सबकी, लेकिन उस वो शक्ति हमारे में आए कैसे? पढ़ तो हम लेते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब हलचल होती है, परिस्थिति आती है, तो सहन शक्ति कहीं चली जाती है। तो सामने वाला व्यक्ति एक्चुअली हमको सहन शक्ति का पाठ पढ़ाने आता है, और वो पाठ को हमको सीख लेना है उस समय। उस समय वो यूज़ करने का टाइम आ गया है, वो जो जितना भी पढ़ा ना, जितना भी चिंतन किया, तो ऐसे ही तो शक्ति नहीं सीख सकेंगे, लेकिन सामने वाला आएगा सिखाने के लिए, तो सीखना है और उसको तुरंत धन्यवाद करना है कि थैंक यू, आपने ये किया इसलिए मैंने सहन शक्ति का पाठ पढ़ा। तो ये हो गया शक्ति। फिर संकल्प, संकल्प कहाँ से मिलेंगे? श्रेष्ठ संकल्प मूल्यों से मिलेंगे। तो बहुत लोगों की आदत होती है मूल्यों से अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स आते हैं वो एक डायरी में लिख के रखते हैं, तो श्रेष्ठ संकल्प मिलेंगे। और तो हो गया ज्ञान, गुण, शक्ति, समय हम बाद में लेंगे। फिर है खुशी। खुशी कैसे बढ़ेगी? बाबा ने कहा है खुशी खजाना है, खुशी खुराक है, खुशी बांटने से बढ़ेगी। तो जितना खुशी बांटते जाएंगे उतना ये वाला खजाना बढ़ते जाएगा। और दुआएं और पुण्य कर्म, ये कैसे बढ़ते? दूसरों को सहयोग देने से, दूसरों को सुख देने से। जितना हम दूसरों को सुख देंगे ना, उतना हमको दुआएं मिलती है, उतना हमारा पुण्य का खाता बढ़ता है। बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे हम हिस्ट्री हॉल में आके बैठते हैं योग के लिए, कोई बूढ़ी माता आ गई, वो बेचारी नीचे नहीं बैठ सकती और हम ऊपर बैठे हैं, उठ के नीचे बैठ जाएंगे तो उसकी दुआएं ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, है ना? ऐसी बहुत छोटी सी पॉइंट है लेकिन बहुत सूक्ष्म है। ये कैसे कैसे हम गलती करते हैं, किसी का भोजन का सहयोग, कोई सेंटर पर कुमार है या कुमारी है, उसको घर से बहुत बंधन है और आप उसकी कुछ सहयोग कर दे भोजन के, तो भी आपको दुआएं मिलेगी। किसी की पवित्रता की रक्षा करना बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। दुनिया में तो दूसरे पुण्य कर्म है लेकिन हमारे लिए ये सब है। किसी को बाबा का ज्ञान सुनाना, किसी को भगवान का परिचय देना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। किसी को भगवान से मिलाना, कई बार सेंटर पे ऐसे लोग होते हैं जो आ नहीं सकते बाबा से मिलने के लिए, परंतु आपने उनकी थोड़ी धन से सेवा कर दी और लेके आ गए, तो कितनी दुआएं मिलेगी, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा से मिलके इतनी खुश होगी, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि थैंक यू या ये वो कुछ भी, लेकिन ऑटोमेटिकली दुआएं मिलेगी, है ना? तो ये हो गया खजाना। तो बाबा ने कहा कि जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। तो बाबा ने कहा तीन बिंदी, आत्मा बिंदी, बाप की बिंदी, और जो बीत चुका पास हुआ ड्रामा भी बिंदी। बच्चे बिंदी लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन क्या होता है, कभी कभी लंबी लाइन लग जाती है या आश्चर्य की मात्रा लगती है या क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो जमा करने की विधि है बिंदी, और गवाने की विधि है रास्ता है लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क या तो आश्चर्य की मात्रा। तो बाबा ने आगे कहा कि अभी बाबा स्वमान से और बाबा की याद से इस व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाओ। तो स्वमान के बारे में हम कितना सुनते हैं, स्वमान का अभ्यास हम सब करते हैं। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो कहा जाता है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्वमान का अभ्यास करो, मैं महान आत्मा हूँ, इस स्वमान का अभ्यास करो। तो जो बाप के टाइटल है वही हमारे स्वमान है। स्वयं ही स्वयं को मान देना ही स्वमान है। निर्माणता में रहना, निर्माणचित रहना, ये स्वमान है। अगर हमें मान की जिज्ञासा है तो स्वमान का कोर्स पूरा नहीं होता। और बाबा ने कहा है जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, तो ये है स्वमान। तो स्वमान से व्यर्थ को फुल स्टॉप लगेगा और बाबा की याद से। तो अब पॉइंट्स निकालेंगे हम कि जब हमारा बहुत व्यर्थ चल रहा होता है, बहुत हलचल, तो उसको फुल स्टॉप कैसे लगाए। ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में लाए तो फुल स्टॉप लगेगा। क्या क्या ड्रामा की पॉइंट्स? ड्रामा कल्याणकारी है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अकल्याण के पीछे कल्याण छिपा हुआ है। मेरा अकल्याण हो नहीं सकता, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। नथिंग न्यू, पहले भी हो चुका। बनी बनाई बन रही, ये सब याद आ जाता है वो जब चलता है सब कुछ, तो जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। ये सारी चीज यूज करी है ना हम सब ने, यूज होती है, हो जाती है, हो जाता है फुल स्टॉप। थोड़ी देर बाद तो सबसे पहले तो वो याद आनी चाहिए कि ड्रामा की भी पॉइंट है हमारे पास, लेकिन वो तो एक्चुअली याद ही नहीं आती हमको टाइम पर। थोड़े घंटों के बाद तब तक पूरा हमारा व्यर्थ का बोझ जमा हो जाता है पूरा स्लॉट, और उसमें बाद में फिर कहीं से वो पॉइंट याद आती है एक कि ड्रामा कल्याणकारी है। तो ड्रामा की पॉइंट अच्छी बात है, अगर याद आता है तो अहो सौभाग्य। ठीक है, तो जब फुल स्टॉप लगानी थी, जैसे कि माइंड को एक कमांड देना है, स्टॉप माना स्टॉप। जैसे हमेशा हम कहते हैं ना कि मन जो है वो बच्चा है, उसको बच्चे की तरह ट्रीट करो, है ना। तो स्टॉप माना स्टॉप। जब हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं गाड़ी लेके और बहुत ट्रैफिक होती है, तो क्या करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, है ना, कार को डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से लेके जाते हैं। तो जब मन में व्यर्थ संकल्प चल रहे होते हैं, तभी भी मन को डाइवर्ट करना है। अब मन को कैसे डाइवर्ट करेंगे और कहाँ डाइवर्ट करेंगे? अगर कुछ हो गया मेरा किसी के साथ, कोई व्यक्ति के साथ कुछ अनबन हो गई, अब वो रूम पर आने के बाद वो कमेंट्री चालू, इसने मुझे ये किया, उसने मुझे वो किया, नेक्स्ट टाइम वो मुझे मिलेगा तो मैं ऐसे बोलूँगी, वो ऐसे बोली मुझे, इतनी सारी ऐसे बहुत देर तक चलता रहता है। तो अब उसको डाइवर्ट करने के लिए क्या क्या करना है? वो तो ड्रामा की पॉइंट आ गई। नथिंग न्यू, कितना आसान लगता है ना ये। तो कोई प्रैक्टिकल पॉइंट बताइए क्या करेंगे। हाँ, तो जहाँ पे वो हो रहा है ना, उस सीन से बाहर निकल के आ जाओ सबसे पहले। तो अगर किसी के साथ झगड़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है, सबसे पहले तो अगर हो सकता है तो उस रूम के बाहर निकल जाओ। और जैसे भाई जी ने कहा, कुछ सुन लो या कुछ पढ़ लो, तो एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग है कि कहीं वॉकिंग पर निकल जाओ। जब हम वॉकिंग पर नेचर में निकल जाते हैं ना, तो अपने आप कुछ अच्छे हार्मोन सिक्रीट हो जाते हैं बॉडी में, और फिर अच्छा फीलिंग होने लगता है। और साथ साथ कोई ना कोई क्लासेस सुननी है। ऐसे ही नहीं चलना है, क्योंकि जब ऐसे भी चलेंगे ना तो वो बात याद आती रहेगी। तो क्लासेस सुनने लग जाओ, कोई अच्छी क्लासेस जो आपकी पहले से इमरजेंसी क्लासेस जमा हो आपके पास, कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे ये सुनना है। तो ऐसी कोई क्लासेस हमारे पास होनी चाहिए कि कोई, जैसे ड्रामा की पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, तो ड्रामा की क्लासेस हमारे पास जॉइन होनी चाहिए, या है ना व्यर्थ पर कुछ, व्यर्थ संकल्पों को कैसे मिटाएं, ऐसी कोई क्लासेस हमारे पास होनी चाहिए। क्रोध को कैसे जीते, ऐसी कोई क्लासेस हमारे पास होनी चाहिए। हमारे यज्ञ के भाई बहनों ने जो क्लासेस सुनाई, वही सब हमारे पास हो। तो एक एक क्लासेस सुन लेना, फिर कहा कुछ पढ़ लेना। साकार मुरली जो उस दिन की है, उसी को उठा के उसको पढ़ना चालू करें। जैसे ही उसको पढ़ना चालू करेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट ज़रूर मिल जाएगी, जिससे वो व्यर्थ स्टॉप हो जाएगा। पूरी मुरली में नहीं तो वरदान में तो मिल ही जाएगा, और वरदान में नहीं तो स्लोगन में मिल ही जाएगा। ये बाबा ने यूनिवर्सल करके रखा है, जो बहुत लोगों के अनुभव है कि साकार मुरली से पॉइंट मिल जाती है। और क्या करेंगे? अव्यक्तवाणी की किताब भी निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अचानक खोल के, अचानक ये कह रहे हैं, अचानक ऐसी कोई भी पेज खोल दो, बाबा को याद करो, अचानक पेज खोल दो, हमारा उत्तर उस पेज पर होगा। ये भी एक है। जब हम बाबा के सामने अगर उस समय योग लगाने की कोशिश करेंगे ना, तो योग नहीं लगता, बहुत जोर से तूफान चल रहा होता है उस समय मन में, तो नहीं लगते, नहीं लगेगा। दूसरा, जैसे हम ना, जब एक होता है प्रोफाइलेक्सिस मेडिसिन देते हैं, एक होता है जब पेशेंट ओपीडी में आता है तो मेडिसिन देते हैं, एक होता है जब आईसीयू में पेशेंट होता है आता है तो इमरजेंसी मेडिसिन हमारे पास होती है, और जैसे ही वो आता है तुरंत हम इंजेक्शन लगाते हैं और वो ठीक होता है। तो ज्ञान की इमरजेंसी पॉइंट्स होनी चाहिए हमारे पास, एक तो ड्रामा की पॉइंट्स बोली, ऐसी भी कई कई पॉइंट्स आती है हमारे पास दिन में, है ना, साकार मूल्यों से, उसको कहीं ना कहीं लिख कर रखना है उस पॉइंट्स को कि ये मेरी इमरजेंसी पॉइंट्स है, जब भी कुछ होगा तो तुरंत मेरे पास होनी चाहिए, या तो मोबाइल पे टाइप होनी चाहिए वो, मोबाइल पे लिखी हुई होनी चाहिए वो, या हमारा खुद का चिंतन, पहले कोई परिस्थिति आई और हमने कुछ चिंतन किया, वो चिंतन बिंदु हमारे पास होने चाहिए, तो हम ऐसे फुल स्टॉप लगा सकेंगे। तो बाबा ने कहा बाबा की याद और स्वमान से व्यर्थ को फुल स्टॉप। फिर बाबा ने आगे कहा कि बाबा ने जमा करने की विधि बताई तीन बिंदी, लेकिन बिंदी नहीं लगाते। फिर बाबा ने समय के बारे में याद की, बात की कि समय का महत्व, समय कितना महत्वपूर्ण है, परंतु बच्चे क्या करते हैं, समय को साधारण रीति गवा देते हैं, व्यर्थ नहीं होता परंतु साधारण रीति समय को गवा देते हैं, और संकल्पों को भी बुरे संकल्प में ही चलते परंतु साधारणता में चले जाते हैं, व्यर्थ में चले जाते हैं। तो समय और संकल्प के बारे में बाबा यहाँ बात कर रहे हैं। तो समय को सफल कैसे करें, समय ऐसी चीज़ है जो रिसाइकल नहीं हो सकती, एक टाइम जो समय बीत गया वो बीत गया, अगर आज का दिन हमने ये मुरली नहीं पढ़ी होगी ना तो हम इसको कल उठा के देखने वाले नहीं हैं कि क्योंकि कल तो दूसरा हमारे पास भोजन है सुबह सुबह, तो कल नहीं उठाएंगे। तो जैसे समय बीत गया तो बीत गया, और देखा गया जैसे बाबा इस मुरली में रिचेस्ट हाईएस्ट लोगों की बात कर रहे हैं, तो जो लोग सफल हुए हैं अपनी ज़िंदगी में उन्होंने समय को बहुत महत्व दिया है, समय को उन्होंने सफल किया और आज वो कहाँ कहाँ है। एडिसन जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट था, उसने 2500 आविष्कार किए, इन्वेंशन। तो वो जब बच्चा था तो क्या करता था, जब वो रेलगाड़ी में जाता था तो सब्जी बेचता था, अब वो सब्जी रोज़ बेचता था, फिर उसके पास फिर भी थोड़ा टाइम रहता था, तो उसने क्या किया, सब्जी बेचने के साथ साथ न्यूज़पेपर भी देना चालू कर दिया कि मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। तो टाइम बचाने के लिए हर स्टेशन पे आते थे, स्टेशन पर उतरकर न्यूज़पेपर बांटना चालू किया। धीरे धीरे जो रेलगाड़ी के पुस्तकालय होते हैं उसका वो मेंबर बन गया, और ऐसे ऐसे आगे वो निकलता गया। तो देखो कैसे समय की बचत, कैसे समय को उसने सफल किया, तब इतना आगे बढ़ा ना। ऐसे ही धीरूभाई अंबानी चाय बेचता था पहले वो मुंबई में, और आज इंडिया का जो रिचेस्ट आदमी है वो है उसका बेटा। तो कैसे उन्होंने सफल किया हम अपना समय, गांधी जी के बारे में बताते हैं, वो अपने मिनट मिनट का हिसाब रखते थे, अपने आराम के लिए भी वो टाइम निकालते थे। तो सब बड़े आदमियों ने अपने समय को कैसे सफल किया, समय को वरदान होता है, अगर उस समय हमने कर लिया ना तो बाबा की मदद भी मिलती है। जैसे लास्ट मुरली, फर्स्ट सीजन की जो मुरली चली उसमें बाबा ने क्या बात की थी, मन की डांस, मन की मौन, मन की शक्ति, अगर हमने इस पे काम कर लिया ना तो फिर आगे सफलता मिलेगी, तुरंत करना है। बाबा ने एक हफ्ता बोला था मन की मौन और एक महीना बोला था मन की शक्ति, तो इस पे काफ़ी चर्चा हुई यहाँ पर भी। तो काम करना है उस समय। एक कहानी बताते हैं ना, एक बंदर और एक बंदरी बैठी थी एक झाड़ पर ऊँचे, और आकाशवाणी हुई कि कूद जाओ तो परी बन जाएंगे। तो बंदर ने क्या सोचा, कूदेंगे तो टूट जाए, हड्डी फसली टूट जाएगी, लेकिन बंदरी कूद गई और परी बन गई। तो बंदर ने सोचा अरे ये परी बन गई तो मैं भी कूदता हूँ, वो कूदा तो नीचे गिर गया। तो फिर उसने सोचा कि ऐसे क्यों, वो परी बन गई और मैंने जब कूदा तो मैं परी नहीं बना, क्यों हड्डी टूट गई। तो आकाशवाणी वापस से हुई कि समय को वरदान था, उस समय तुम नहीं कूदे और बाद में सोच रहे हो कि कूदता हूँ। तो समय को जब वरदान होता है तो उस समय कर लेना चाहिए। जैसे जगदीश भाई जी के अनुभव में देखते हम, एक बार बाबा ने सबको होमवर्क दिया था टॉपिक लिखने के लिए, तो सब लोगों को होमवर्क दिया लिखने के लिए, और फिर क्या हो गया, उस दिन लाइट चली गई, लाइट चली गई तो सबने सोचा बाबा को तो पता ही है अभी क्या लिखना, बाबा तो पता है लाइट चली गई है, बाबा थोड़ी पूछेंगे कल। लेकिन जगदीश भाई जी ने क्या किया, वो जाके बाहर स्ट्रीट लाइट में बैठे और उन्होंने वो चिंतन लिखा। और नेक्स्ट डे जब सब आए तब बाबा ने पूछा किसने किसने लिखा, तो सिर्फ जगदीश भाई जी ने हाथ उठाया, तो फिर बाबा ने उनको वरदान दिया ना कि इस यज्ञ का सब लिटरेचर वही लिखेंगे। तो कैसे उनको वरदान मिल गया, क्या पता हमारे लिए भी कोई समय वरदानी हो और उस समय हम उस चीज़ को कर लें। एक क्लास में सुना था मुन्नी बहन जी, जब कोई भी बच्चे आते थे ना मधुबन, तो बाबा कुछ ना कुछ गिफ्ट देते थे, तो बाबा ने उनको रुमाल गिफ्ट दिया। तो उन्होंने बाबा को बोला कि बाबा आप ये रखो अपने पास ही, किसी और के लिए काम आएगा यज्ञ में। तब बाबा ने उनकी वो भावना देख के उनको वरदान दिया कि मेरे यज्ञ की पालना ये बच्ची करेगी, और देखो आज वो कैसे पालना कर रही है। तो कैसे समय को वरदान होता है और भगवान से हमको वरदान मिल जाए। तो हम साधारण रीति से समय को कहाँ गंवाते हैं, तो समय को सफल कैसे करें, सबसे पहले तो हमको लिस्ट निकालनी है कि कहाँ कहाँ हमारा समय साधारण रीति बीतता है। योग में जब बैठते हैं तो बराबर से योग करते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे टाइम है जिसको हम साधारणता में गंवाते हैं। तो कौन कौन सा समय है, क्या बोलेंगे? स्नान करना, स्नान करते टाइम पे भी बहुत सारे चिंतन चलते। देखो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम वॉकिंग करते हैं, जब हम अकेले रूम में होते हैं, जब हम स्नान कर रहे होते हैं, ये टाइम पर भी हमारे संकल्प चल रहे होते हैं। बहुत ध्यान देना है, ये सेल्फ टॉकिंग होती है वो टाइम पे, खुद ही स्वयं से बातें होती रहती है, और जो हम बातें कर रहे होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही होती है, अवचेतन मन में। तो स्नान करते टाइम पे तो कुछ ना कुछ स्वमान लेकर स्नान करें, है ना? बाबा भी तो ऐसे ही स्वमान में ही स्नान करते थे, तो वैसे स्नान करते समय। दूसरा देखा जाएगा, देखो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हम यहाँ बस के लिए रुकते हैं, बस को आने में 5-10 मिनट लग जाते हैं। अगर हमको यहाँ से ज्ञान सरोवर जाना है, ज्ञान सरोवर जाने के लिए 10-12 मिनट लगते हैं, तो वो 10-12 मिनट साधारण रीति से नहीं गवा देने, उस टाइम पर भी कुछ ना कुछ अभ्यास करने हैं। नहीं तो ऐसे ही गवा रहे ना, फिर बोलते हैं 8 घंटे का चार्ट, और 4 घंटे का चार्ट नहीं होता हमारा। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सारे समय हम गवा रहे हैं। तो 10-12 मिनट वहाँ लगते हैं। जो भाई बहनें बाहर रहते हैं, जो जॉब्स पे जाते हैं, उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है ना, अपने घर से निकल के बस स्टॉप पे जाएंगे या कार या रिक्शा लेंगे जो भी, तो उतना समय ट्रैवलिंग का जो होता है, तो उस ट्रैवलिंग के समय को भी हम सफल कर सकते हैं कुछ योग अभ्यास से, कुछ क्लासेस सुन के, कुछ पढ़ कर। तो एक होता है ट्रैवलिंग, कोई ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होते हैं, मुंबई में देखा होगा इतनी रश होती है ट्रेन से ट्रैवल करने, 1-2 घंटा लोग सिर्फ ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उस ट्रैवलिंग के समय को भी सफल करना है। ऐसे ही अपने अपने कर्म में देख लो, जहाँ जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ जहाँ हम जॉब्स करते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ब्रेक्स तो मिलती है ना, कोई कोई उठ के चाय पानी, हाँ बोला उन्होंने, तो जैसे कि टी ब्रेक होती है, पानी के लिए हम उठते हैं तो पानी को दृष्टि दे के पिए पानी, और चाय वाय पीने के लिए उठते हैं, तो उस समय को भी क्यों साधारण रीति से गवाए। जैसे हमारे लिए क्या होता है ओपीडी में, 2 पेशेंट के बीच में हमारे पास समय होता है, और उस समय को हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसको सफल करें, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो 9 से 5 हमारे ऐसे ही बीत जाएंगे। तो वही समय होता है, क्योंकि इतने पेशेंट लाइन से लगे रहते हैं एक के बाद, तो एक के बाद जो होता है ना बीच का समय, तो कुछ ना कुछ अपने टेबल पे पढ़ने के लिए रख देते हैं, और फिर उसमें देख लेते हैं एक पॉइंट, ठीक है ये है आज ये करना है। तो ऐसे समय को सफल करना। तो फिर आगे बाबा ने कहा कि बच्चे समय ऐसे ही गंवा देते हैं, फिर बाबा को कहते हैं कि हो जाएगा कर लेंगे, फिर बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं है, बहुत समय का जमा का खाता चाहिए तभी पूरा वर्षा मिलेगा। अगर बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सब हाथ उठाते हैं, अगर बाबा पूछे त्रेता युगी बनेंगे तो कितने हाथ उठाएंगे, कोई नहीं हाथ उठाता। तो सबको लक्ष्मी नारायण ही बनना है, सबको सत्ययुग में ही आना है, तो पूरा वर्षा लेना है, तो समय को सफल भी करना है, और उतने समय जमा का खाता भी उतने लंबे समय का हो, बाबा ने कहा बहुत काल का हमारा हो। फिर बाबा ने आगे कहा कि बच्चे वायदे बहुत करते हैं, कर लेंगे, ये की भाषा कही ना बाबा ने, कि ये की भाषा को ख़त्म करके दृढ़ता हो, वायदे की फाइलें जमा हो रही है बाबा के पास, वायदे करते हैं परंतु कर्म में नहीं आता वो। तो बाबा ने क्या कहा, कर्म और संकल्प को प्रैक्टिकल में लाओ, प्लान और प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल में लाओ प्लान को। तो जो भी हम संकल्प करते हैं या जो भी हम प्लान करते हैं उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाना है। हम सब बाबा से बहुत वायदे करते हैं, सुबह सुबह अमृत वेला शांति स्तंभ के पास खड़े रह के या बाबा की कुटिया में बैठ के कि आज ये करेंगे आज वो करेंगे, है ना, बहुत सारे वायदे होते हैं। बाबा भी खुश होता है, बाबा ने आज कहा बच्चे हिम्मत तो रखते हैं, हिम्मत देख के बाप खुश होता है। देखो बाबा कितना पॉजिटिव है हमारे लिए, तो वायदे देखकर खुश होता है वो हमारे, क्योंकि हमने हिम्मत रख के वो वायदे किए। परंतु अब इसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले एक पॉइंट है दृढ़ता। दृढ़ता होनी चाहिए हमें कि हमको करना ही है। लेकिन अब दृढ़ता भी आएगी कैसे, दृढ़ता तो हम बहुत बार बोलते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ना। सुन तो हम ये पॉइंट्स लेते हैं, लेकिन उस एक एक पॉइंट को उठा के चिंतन करना है कि दृढ़ता आएगी कैसे। तो सबसे पहले तो हमको फायदे मालूम होने चाहिए कि ये करने से क्या फ़ायदा होगा। अपने कॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना पड़ेगा, अपने चेतन मन को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये करने से ये होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, कभी कभार उनको 5-6 मेडिसिन चालू होती है, तो हम उनको उनके कॉन्शियस माइंड की थोड़ी ट्रेनिंग करते हैं कि देखो आप अगर सॉल्ट कम कर दोगे, अगर आप एक्सरसाइज वॉकिंग करोगे तो आपका बीपी का मेडिसिन कम होते जाएगा। फिर वो करना चालू करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं करते। फिर वो नेक्स्ट टाइम आते हैं, उनकी 1-2 मेडिसिन कम होती, फिर हम उनमें थोड़ा लोभ भरते कि देखो 3 मेडिसिन कम हो गई, अभी 3 बाकी है, तो आपने ये किया ना। तो उनके कॉन्शियस माइंड को फ़ायदे बताने, तो जो भी हम चीज़ करेंगे ना उसके फ़ायदे हमको बताने चाहिए। जैसे हमने क्लास की भोजन कैसे खाए, अगर भोजन पे मौन रखना है, भोजन पे मैं मौन रख के खाना खाऊंगी तो मुझे क्या फ़ायदे होने वाले उससे। जब मुझे फ़ायदा पता चलेगा ना, ये हमारा मन ऐसी है, जब उसको फ़ायदे पता चलेगे नुकसान पता चलेगे तब वो करता है। तो सबसे पहले दृढ़ता होनी चाहिए। और कौन कह रहा है करने के लिए, स्वयं भगवान। एक बार क्या हुआ, बाबा ने मम्मा से कहा, क्वीन एलिजाबेथ आई थी, उसके लिए 108 चित्र बनाने थे, पर कपड़े पर बनाने थे। तो बाबा ने कहा ये 2 दिन में तैयार करने हैं। तो मम्मा ने कहा जी बाबा। मम्मा बच्चों के पास गई और मम्मा ने कहा कि आप सबको ये करना है। तो बच्चे कहने लगे कैसे होगा, 2 दिन में कैसे होगा। तो मम्मा ने कहा किसने कहा, स्वयं भगवान कह रहा है ना, तो होना ही है। तो मम्मा की दृढ़ता देखो, मम्मा का निश्चय देखो कैसा था, तो होना ही है, इसलिए हो गया। दूसरी पॉइंट, धैर्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि संकल्प हमने कर लिया और हो गया, कुछ ना कुछ बीच में धैर्यता होनी चाहिए। जैसे वेट लॉस के लिए कोई पेशेंट आता है, जैसे लास्ट वीक एक पेशेंट आई, इतनी मोटी पेशेंट, इतनी ओबीज, और क्या कह रही, 1 हफ्ते में मेरा वेट कम कर दो डॉक्टर, मुझे हॉस्पिटल में ही रखो और 1 हफ्ते में मेरा वेट कम करके दिखाओ। मतलब ये क्या मैजिक है। तो धैर्यता होनी चाहिए, जब आप किसी चीज़ पर काम करोगे तो उसको सफलता प्राप्त करने को थोड़ा टाइम लगेगा, तो अंदर से निराश नहीं हो जाना है कि ये नहीं मिल रहा है मुझे, तो धैर्यवान होना चाहिए हमें। तीसरी पॉइंट है पहला कदम। कोई भी चीज़ करने के लिए, प्रैक्टिकल में लाने के लिए पहला कदम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम किसी को वॉकिंग करने के लिए कहते हैं तो हम, वो लोग बोलते नहीं होता, ठंडी में नहीं निकलने होता, तो हम उनको यही बोलते हैं कि बस शूज़ की लेस बांधो और बाहर निकलने की देरी है। जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो अंदर से एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे और अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे और फिर आपको अच्छा लगेगा। तो पहला कदम कुछ भी करने के लिए, जैसे कि किसी को अमृत वेला के बाद सोने की आदत है, अब इस आदत को तोड़ना है तो पहले तो हम उसको फ़ायदे बताएंगे कि अमृत वेला में, अगर अमृत वेला के बाद में नहीं सोऊंगा, नहीं सोऊंगी तो क्या होगा, मेरा टाइम कैसे सफल होगा, पहले तो उसको फ़ायदे बता दो। फिर उसके बाद पहला कदम, कोई भी आदत बनाने के लिए 3 दिन, 7 दिन और 21 दिन इसका टारगेट रखना होता है। 3 दिन करूंगी मैं, अपने आप को बोलने का 3 दिन करूंगी, 3 दिन हो गया ना, फिर बोलने का 7 दिन करूंगी, 7 दिन के बाद 21 दिन, और फिर वो आदत बन जाती है। फिर आप ना चाहते हुए भी उसको नहीं तोड़ पाएंगे क्योंकि वह आदत बन जाएंगी हमारी। जैसे कोई कोई ऐसी आदतें बन गई है ना, जो होना चाहते हैं तो भी नहीं छोड़ पा रहे, तो वो कैसे आदत बन गई, तो ये भी आदत बनानी है। फिर है प्लानिंग, जो भी चीज़ हमको करना है, जैसे कि हम चाहते हैं हमारा 4 घंटे का योग का चार्ट हो, तो तो 4 घंटे का योग का चार्ट बोलने से नहीं होता, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि मॉर्निंग में कितना योग करेंगे, शाम को कितना योग करेंगे, कर्म में कब करेंगे, अगर रात में सोने से पहले हम इतना मिनट योग करेंगे, ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए पूरे दिन की, तब जाके वो चीज़ सफल होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, प्लान और प्रैक्टिकल में कैसे लाना है, संकल्प को कर्म में कैसे लाना है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आगे कहा, आज कौन आया है? आज इंजीनियर विंग वाले आए हैं और ग्राम साइंटिस्ट, रूरल विंग वाले आए हैं और बिजनेस वाले आए हैं, और ये जो विंग वाले हैं ये सब कुछ कर्म में लाते हैं, तो ऐसे ही हमको भी कर्म में लाना है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों की वायदों की फाइल जमा होती है, बाबा के पास कोई अलमारी की तो बात ही नहीं, बाबा के पास एक अलौकिक टीवी है, अचानक से अपनी अलौकिक टीवी खोलते हैं, कभी कभी खोलते हैं, रोज रोज नहीं खोलते। और फिर हम जब ये क्लास में चर्चा कर रहे थे, रात की क्लास में पढ़ाई, तो एक भाई ने बोला, अच्छा बाबा के पास टीवी है और हमको बोलता है टीवी नहीं देखो। ऐसे भी कहा किसी ने। और उसके आगे की लाइन जब हमने पढ़ी तो बाबा ने कहा, बाप जो आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो वो भी सुन रहा है। तो हमने कहा, देखो बाबा ने सुन लिया। तो बाबा के पास अलौकिक टीवी है ऊपर। तो हम सोच रहे थे हमारे पास भी ऐसी अलौकिक टीवी हो जहाँ पे हमारी पुरुषार्थ की रिजल्ट बताते रहे बीच बीच में, ताकि हमको कुछ पता चले। तो अलौकिक टीवी है। फिर बाबा ने आगे कहा, ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। इस मुरली से और कौन से पॉइंट निकलेंगे? ब्राह्मण अर्थात स्वमान जितने भी है इस मुरली के, श्रेष्ठ, रिचेस्ट, हाईएस्ट, अविनाशी, खजानों से संपन्न, और त्रिकालदर्शी। और त्रिकालदर्शी कौन सी वाली पॉइंट थी? मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर रचयिता, समय को सफल करने वाले, बोझ को उतारने वाले, निर्बंधन आत्मा। वरदान में बाबा ने कहा, निर्बंधन आत्माएं हो, सूक्ष्म भी धागे नहीं हो, एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आए, है ना? तीन बिंदी लगाने वाले। और हो गए, ब्राह्मण जीवन मजे का जीवन है, वो लास्ट पैराग्राफ। तो बाबा ने कहा, ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, हर चीज का महत्व है। बाबा ने कहा, संगम युग का महत्व है, समय का महत्व है, स्वमान का महत्व है। बाबा ने कहा, संगम युग की अगर महिमा कोई सुनाने के लिए कहे आपको, तो आप 1 घंटा सुना सकते हो। कौन कौन बाबा ने कहा सुना सकते, वह हाथ उठाओ। फिर बाबा ने टीचर बहनों को पूछा, टीचर बहनें बोलो कौन बता सकते हैं संगम युग के महत्व के बारे में। तो संगम युग के महत्व के बारे में टॉपिक्स आती है बोलने के लिए, तो ये जैसे कि हमारे लिए होमवर्क था आज का, कि हम उससे टॉपिक निकाले वो संगम युग का महत्व क्या है। फिर बाबा ने कहा, इसको कायम रखने के लिए नशा चाहिए, ईश्वरीय नशा हमारा इमर्ज रहे, मर्ज हो जाता है तो ईश्वरीय नशा इमर्ज रहे। अब नशा कैसे होना चाहिए? ब्राह्मण जीवन में चलते चलते कभी उदासी आ जाती है, कभी बहुत कंटाला आने लगता है, इसीलिए एवरी डे हमारे पास कुछ ना कुछ उमंग उत्साह की पॉइंट हो, कुछ ना कुछ नशे वाली पॉइंट हो। चले, जैसे लास्ट वीक चर्चा हुई, अलग अलग टॉपिक्स पे हुई, कैसी टॉपिक्स थी आपको सुनाएंगे तो आपको हंसी आएंगी। क्या था? ब्राह्मण जीवन में त्रिशंकु कौन, इस पे चर्चा हुई। बीरबल की खिचड़ी ब्राह्मणों में कैसे बनती है, और ओखली में सर डाला है तो मुसलों से डरना कैसा, और ऊंची दुकान फीके पकवान। तो ये सारे देखो कैसे चिंतन बिंदु है इस पे, ये सब चीज़ों पे तो बहुत कर लिया चिंतन, सहन शक्ति क्या है, खुश कैसे रहना है, और व्यर्थ संकल्प क्या है। अब ऐसे कुछ टॉपिक्स उठाने हैं जो हमको उमंग उत्साह में रखे, हमारी बुद्धि काम करने लगे। आखिर इसका मतलब क्या है, ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब क्या है? ज्ञान को ओखली में सिर डाला है तो मुसलों से डरना कैसा, कैसी कैसी पॉइंट्स थी इसमें। और भाई बहनों ने इतना अच्छे से सुनाया, सबको 20-20 मिनट का टाइम मिला था। खिचड़ी पकाना, बीरबल की खिचड़ी, ब्राह्मण जीवन में बीरबल की खिचड़ी क्या है, तो ऐसी ऐसी कोई पॉइंट्स, तो ईश्वरीय नशा हमारा कायम रहे। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने बहुत समय से बताया है कि समय अचानक समाप्त होना है, तो बच्चे क्या कहते हैं कि हो जाएगा, पता तो चलता रहेगा। हाँ, कभी कभी संकल्प आते, तो तो समय की समाप्ति अचानक होनी है, तो आप लोग समय आपकी रचना है और आप मास्टर रचता हो, बाबा ने कहा। आप समय का इंतजार नहीं करो, समय आपका इंतजार कर रहा है और वो आपका शिक्षक है या परमात्मा आपका शिक्षक है, बाबा ने कहा। तो एक कहानी बताते, एक आदमी एक जंगली हाथी आ गया उसके पास, तो वो तुरंत कूद जाता है कुएं में, कुआ रहता है सामने और उसमें एक झाड़ रहता है, वो झाड़ पे लटक जाता है और नीचे देखता है तो एक मगरमच्छ मुंह खोल के तैयार है उसको खाने के लिए। और फिर थोड़ी देर में वो बहुत डर जाता है और थोड़ी देर में ऊपर देखता है तो मधुमक्खी का छत्ता होता है और मधुमक्खी के छत्ते से शहद गिर रहा होता है। फिर थोड़ी देर में वो अपने लेफ्ट साइड पे देखता है तो जिस डाली पर वो लटक रहा होता है तो दो चूहे होते हैं, एक सफ़ेद और एक काला, और वो उस डाली को कतरने लगते हैं। तो अब देखो चारों तरफ से, नीचे से मौत, बाजू से मौत, लेकिन वो लगा किस में है, मध खाने में। इतने में वहाँ पे शंकर और पार्वती आते हैं, तो पार्वती शंकर से कहती है इसको बचा लो ना। तो शंकर कहता है इसको देखो तो सही कि इसकी मौत सामने खड़ी है। वो वाइट और ब्लैक चूहा दिन और रात का प्रतीक है, दिन रात बीतते जा रहा है, मौत सामने खड़ा है। बाबा कितनी बार ये पॉइंट बोलते हैं, मौत सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, तुम्हारे सिर पर खड़ा है, और फिर भी वो रस लेने के लिए जो संसारी सुख है उसमें डूबा हुआ है। समय कभी भी समाप्त हो सकता है परंतु इंसान संसारी सुखों में डूबा हुआ है। फिर शंकर उससे कहता है चलो, तो बोलता नहीं, थोड़ा शहद बाकी है। तो इस प्रकार वो कहानी को बताते हैं कि कैसे समय की समाप्ति अचानक होनी है। फिर बाबा ने आगे कहा कि बच्चे जो है वो मतलब दिलासा देते कि बाबा हो जाएगा, कर लेंगे, मुश्किल लगता है उनको। तो फिर बाबा ने कहा कि ये मुश्किल क्यों, जब बाबा तुम्हारे बोझ लेने के लिए तैयार है, जब बाबा सामने से ऑफर कर रहा है तो बोझ क्यों उठाते हो, तो सारे बोझ बाबा को दे दो। तो फिर बाबा ने कहा 63 जन्म की आदत लग गई है, आदत से मजबूर है बच्चे, इसीलिए बाबा को देते नहीं, तो कभी सहज योगी कभी मुश्किल योगी, ऐसा क्यों, बाबा ने कहा, ऐसा क्यों होता है। आप तो अपना टाइटल क्या देते हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये टाइटल देते हो, और फिर कभी सहज कभी मुश्किल, ऐसा क्यों। नहीं तो बाबा ने कहा अपना टाइटल चेंज करो, अगर ऐसा है तो, अगर कभी मुश्किल योगी कभी सहज योगी है तो टाइटल चेंज करो। तो जो भी हमने बोझ उठा के रखे हैं अपने ऊपर, बहुत सारे बोझ है ना, कहीं स्टूडेंट्स के भी फ़ोन आते हैं हमको, तो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते वो यहाँ की क्लासेस सुनते हैं ना, तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा बोझ है मेडिकल का पढ़ाई, इसको छोड़ देना चाहिए, मतलब हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं वो नहीं। तो हम उनको समझाते हैं कि देखो आप लौकिक में जो पढ़ रहे हो वो आपको कैसे काम आएगा अलौकिक में, ऐसे भी तो लोग चाहिए ना हमको यज्ञ में कि सभी एक जैसे बन के रह जाएंगे। मिनट में पूरा करते। तो आगे बाबा ने कहा, योग अग्नि है और अग्नि क्या करती है, लोहे को भी मोल्ड कर देती है, मुश्किल भी परिवर्तन हो जाती है। तो ऐसे बाबा की याद। और बाबा ने लास्ट में कहा कि जमा के खाते को बढ़ाते जाओ, कभी मुश्किल कभी सहज योगी नहीं, ब्राह्मण जीवन है मज़े का जीवन, संगम युग है मज़े का युग। तो बोझ उतारने का युग है, बोझ उठाने का युग नहीं है। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि अपने नॉलेज के आईने में देखो, ऐसे करके बाबा ने मुरलियाँ ही ख़त्म की। तो ब्राह्मण जीवन मज़े का जीवन है। तो 15 तारीख को बाबा जब आ रहे हैं तो हमको भी मज़ा आ जाए, और संगम युग जब समाप्त हो तो हम भी बाबा को कहे मज़ा आ गया, है कि नहीं। ठीक है, तो इधर ही समाप्त करते हैं। ओम शांति।